स्वागत है आपका दिन भर में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 23 जनवरी और दिन गुरुवार। इमरान खान ने मोदी सरकार की नाजियों से तुलना को एक बार फिर सही ठहराया।
इंडिया एट द मोमेंट इज बीन रन बाय एन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड आरएसएस।
नागरिकता संशोधन कानून के कारण जदयू के अंदर मचा बवाल, नीतीश कुमार ने पवन वर्मा को सुनाई खरी खरी।
आश्चर्य की बात है किस तरह का वक्तव्य आप दे रहे हो, मुझे फिर भी सम्मान है और इज्जत है, लेकिन जहां उनको अच्छा लगे वहां जाए, मेरी शुभकामना।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि कश्मीर की समस्या सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी ताकतों को आगे आना होगा और इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। ये बात डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बीबीसी से खास बातचीत में उन्होंने कही, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि इसमें किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने तय किया है कि म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के मामले की सुनवाई करना अंतर्राष्ट्रीय अदालत के न्यायिक क्षेत्र के दायरे में आता है। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसके साथ ही म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ भविष्य में अत्याचार नहीं करने का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वकील प्रिया पिल्लई बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इस मामले में एक बेहद सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया है।
Given the role of the court and given that it's asking for these regular updates, essentially it's going to be monitoring the situation and can report on.
इस मामले में कोर्ट की भूमिका और जिस तरह ये अदालत समय समय पर अपडेट मांग रही है, ये बताता है कि अदालत एक तरह से इस मामले पर बारीकी निगाह बनाए हुए है और अपने आदेशों का निर्वहन नहीं होने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत कड़े कदम उठा सकता है। ये एक गंभीर बात है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत की हैसियत संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास किसी प्रस्ताव या कुछ देशों द्वारा म्यांमार को प्रभावित करने जैसी स्थिति से भी ज़्यादा है और इस संस्था की कानूनी ताकत भी बहुत ज़्यादा है। ये थी वकील प्रिया पिल्लई। चीनी सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वुहान शहर के बाद अपने एक अन्य शहर से भी नागरिकों के बाहर जाने और अंदर आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। वुहान से लगभग 70 किलोमीटर दूर हुआंगांग शहर के नागरिकों को भी शहर नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई है। वुहान शहर में वायरस सबसे पहले सामने आया था। चीनी अधिकारियों के मुताबिक चीन में अब तक लगभग 600 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। ये वायरस एक पशु बाजार से निकलने की बात सामने आई है। वुहान शहर पर आवाजाही के प्रतिबंध लगने से ठीक पहले बीजिंग पहुंची महिला जेन ने से सुनिए उनके अनुभव। मैं काफ़ी परेशान थी क्योंकि अब तक हमने सोशल मीडिया और स्टेट मीडिया से जो कुछ भी सुना वो काफ़ी गंभीर है, लेकिन मेरा हाल ये है कि मेरा बच्चा, मेरे पति और परिवार वुहान शहर में नहीं है लेकिन वुहान शहर के पास में कहीं है। ऐसे में मुझे तो लौटना पड़ेगा। एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे वापस न आने के लिए कहा था, लेकिन मेरी हालत ये है कि मुझे वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि मेरा बच्चा अभी काफ़ी छोटा है। ये थे चीनी महिला के शब्द। अंगोला में अभियोजक पक्ष ने अफ्रीका की सबसे अमीर महिला इसाबेल दोस सांतोस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का अभियोग लगाया है। अंगोला के अटॉर्नी जनरल हेल्दर पिता ग्रोस ने कहा है कि ये अभियोग सांतोस के साल 2018 तक राष्ट्रीय तेल कंपनी सोनांगोल की मुख्य अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। हालांकि सांतोस ने सभी आरोपों से इनकार किया है। रूस ने कहा है कि सैकड़ों उग्रवादियों के हमले में 40 सीरियाई सैनिकों की मौत हुई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उग्रवादियों ने लगातार कई हमलों के बाद इदलिब के उत्तरी प्रांत में स्थित दो इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पोलैंड के ऑशविट्स डेथ कैंप की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर दुनिया के तमाम नेता यरूशलम में इकट्ठा हुए। बीबीसी समाचार।
ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا دن بھر میں، میں ہوں اقبال احمد۔ آج ہے جنوری کی 23 تاریخ اور دن ہے گروار۔ آپ اس کارکرم کو ریڈیو کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون پر بھی لائیو سن سکتے ہیں۔ کارکرم کی شروعات پاکستان کے پردھان منتری عمران خان سے۔ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے بھارت کی مودی سرکار کی تلنا نازیوں سے کرنے کو ایک بار پھر صحیح ٹھہرایا ہے۔ ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم کی بیٹھک کے دوران بی بی سی سنواد داتا مشال حسین سے انہوں نے خاص بات چیت کی۔ اس افسر پر انہوں نے ایران امریکہ تناؤ، بھارت پرشاست کشمیر جیسے انیک مدوں پر بات چیت کی۔ بی بی سی سنواد داتا مشال حسین نے جب ان سے پوچھا کہ بھارت نے کشمیر کے وشیش راج کے درجے کو ختم کر دیا تھا، اس وقت آپ نے بھارت کی مودی سرکار کی تلنا جرمنی کی نازیوں سے کی تھی، کیا آپ واقعی ایسی تلنا کو صحیح مانتے ہیں؟ تو اس پر عمران خان کا کہنا تھا،
انڈیا ایٹ دا مومنٹ از بین رن بائی این ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی وچ از کالڈ آر ایس ایس۔
بالکل، بھارت میں اس سمے ایک اتی وادی وچار دھارا کی سرکار ستا میں ہے جسے آر ایس ایس کہتے ہیں۔ 1925 میں آر ایس ایس کا جب گٹھن ہوا تھا تب یہ سنگھٹن اس سمے کی نازی پارٹی سے پربھاوت تھا، اور پردھان منتری نریندر مودی اس سنگھٹن کے لائف ممبر ہیں۔ لیکن بی بی سی سنواداتا نے جب ان سے یہ پوچھا کہ فی الحال تو بھارت میں زمین پر ایسا کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس طرح کی تلنا بھڑکاؤ لگ سکتی ہے، تو ان کا جواب تھا،
آئی مین آل یو ہیو ٹو ڈو از ریڈ واٹ دا فاؤنڈنگ فادرز آف آر ایس ایس سیڈ۔
آپ کو یہ پڑھنا چاہیے کہ آر ایس ایس کے سنستھاپکوں نے کیا کہا تھا۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دل کو دہلا دینے والا ہے۔ 80 لاکھ لوگ پچھلے 5 مہینوں سے ایک کھلی قید خانے میں رہ رہے ہیں۔ آگے کیا راستہ ہے اور کیا امریکہ کے راشٹرپتی ٹرمپ کی اس میں کوئی بھومکا ہے؟ جب بی بی سی سنواداتا نے ان سے یہ سوال پوچھا تو عمران خان کا کہنا تھا،
How is this issue going to be resolved unless and until either the UN gets involved or a power like US gets involved?
عمران خان کہہ رہے تھے کہ آخر یہ سمسیا کیسے سلجھے گی؟ جب تک سنیکت راشٹر یا امریکہ جیسا کوئی طاقتور دیش اس میں ہستچھیپ نہیں کرے گا، اس کے بغیر ہم آخر اس کا سمادھان کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے حالات اور خراب ہوں گے۔ یہ تو بات عمران خان نے کہی بی بی سی سنواد داتا سے مشال حسین سے، لیکن امریکی راشٹرپتی ٹرمپ نے ایک بار پھر کشمیر معاملے میں ہستچھیپ کرنے کی اچھا جتائی ہے۔ لیکن اس پر بھارت کا کہنا ہے کہ کشمیر میں کسی بھی تیسرے پارٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ودیش منترالے کے پروکتا رویش کمار نے کہا کہ دنیا پاکستان کے دوہرے رویے کو سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی پردھان منتری عمران خان کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہتاش ہیں اور امید کھوتے جا رہے ہیں۔ بتا دیں کہ بدھوار کو عمران خان نے سنیکت راشٹر اور امریکہ سمیت انتراشٹری شکتیوں سے بھارت کے ساتھ تناؤ کم کرنے میں مدد کا انوروھ کیا تھا۔ اور اب بات بہار سے۔ بھوٹان میں بھارت کے پورو راجدوت پون کے ورما کو نتیش کمار نے سال 2013 میں اپنا سانسکرتک سلاحکار نیوکت کیا تھا، لیکن آپ انہیں پون ورما کو نتیش کمار نے اپنی من پسند پارٹی میں چلے جانے کی صلاح دی ہے۔ کیوں؟ نتیش کمار کی بودھک برانڈنگ میں لگے پون ورما سے وہ ناراض ہیں، بتا رہی ہیں پٹنہ سے سیٹو تیواری۔
چناؤ دلی میں ہونے ہیں لیکن اس کا اثر بہار میں دکھ رہا ہے۔
کسی کے من میں کوئی بات ہے تو آ کر کے ومرش کرنا چاہیے۔ آشچر کی بات ہے کہ کس طرح کا وکتویہ آپ دے رہے ہو کہ ہم سے کیا بات کرتے تھے، اب ہم کہیں گے کہ ہم سے کیا بات کرتے تھے؟ یہ سب کوئی طریقہ ہے؟ تو ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، مجھے پھر بھی سمان ہے اور عزت ہے، لیکن جہاں ان کو اچھا لگے وہاں جائیں، میری شبھ کامنا۔
دراصل مکھیہ منتری و جدیو پارٹی ادھیکش نتیش کمار اپنی ہی پارٹی کے راشٹریہ مہا سچیو پون کے ورما سے ناراض ہیں۔ بیتے 21 جنوری کو پون کے ورما نے پتر لکھ کر دلی چناؤ میں بی جے پی جے ڈی یو گٹھ بندھن پر سوال اٹھایا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے نتیش کمار سے سیدھانتک اسپشٹتا کی مانگ کی تھی۔ بتا دیں کہ سی اے اے اور این آر سی کے ورودھ میں پون کے ورما کے ساتھ ساتھ راشٹریہ اپادھیکش پرشانت کشور بیان دیتے رہے ہیں جو پارٹی لائن سے الگ ہے۔ माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पवन के वर्मा को आड़े हाथों लेकर प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा,
जब भी पार्टी की बैठक होगी तो मैं अपनी बात मजबूती से रखूं और इस ढंग की ये सब बयान तो पार्टी के अंदर ही यदि कोई राय हो फोरम से पर बात का होना चाहिए था जो अभी नहीं हुआ। पार्टी ने सोच समझ के फैसला किया। हमारा बिहार में चल रहा है, यदि दूसरे जगह हम गठबंधन करते हैं तो इसमें हर्ज क्या है।
वहीं नीतीश कुमार के नाराजगी भरे बयान के बाद पवन के वर्मा ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए नीतीश कुमार के पार्टी प्लेटफॉर्म पर लोकतंत्र होने की बात का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अभी भी उन्हें जवाब का इंतजार है। इस बीच प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बयान जारी करके नीतीश कुमार और JDU को वैचारिक तौर पर कंगाल बताया है। वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन कहते हैं,
लेकिन कहीं न कहीं BJP को इस विवादों से फायदा यह हो रहा है कि पार्टी कमजोर पड़ रही है। जब पार्टी कमजोर पड़ेगी तो गठबंधन में उनके डिमांड कमजोर पड़ेंगे, तो यह बात नीतीश जी बखूबी समझते हैं।
केंद्र में सत्तासीन BJP सरकार के ट्रिपल तलाक CAA NRC धारा 370 के मसले पर नीतिगत कदम को लेकर JDU के एक धड़े के अंदर बेचैनी है। वहीं राज्य में जगह जगह मुस्लिम आबादी में CAA NRC को लेकर चल रहे आंदोलनों पर भी पार्टी की झोली में सिर्फ आश्वासन है, पार्टी ने लगभग उस पर मौन साध रखा है। साफ है कि राजनीति में रणनीतिक तौर पर मुस्लिम समाज में JDU की छवि और अब बौद्धिक चेहरे के मोर्चे पर भी JDU बैकफुट पर है।
पटना से ये थी सीटू तिवारी। अब बिहार से ही सटे चलते हैं झारखंड। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पत्थलगड़ी समर्थकों के जरिए कथित तौर पर 7 गांव वालों की हत्या कर दी गई है। इस बारे में और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं रांची रवि प्रकाश के पास, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन से मुझसे जुड़ चुके हैं। रवि, इस बारे में आपके पास और अधिक क्या जानकारी है?
देखिए, पुलिस ने एक मामले में 3 लोगों को डिटेन किया है, जो पूछताछ की जा रही है। उन लोगों में एक जो आदमी है वो उस गाँव की मुखिया रह चुकी है, उनके पति है। तो एक एंगल यह भी है इसका कि ये गांव के 2 गुटों का विवाद था और इसको लेके ग्राम सभा की बैठक हुई। ग्राम सभा की बैठक में यह तय किया गया कि जो लोग गांव में गांव में तोड़फोड़ करने का आरोप कुछ लोगों पर था उनको दंडित किया जाए। इसके बाद से गांव के 7 लोग लापता हो गए थे, जिनके बारे में पुलिस को मंगलवार को पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन पुलिस लाश नहीं पहुंच रहा है क्योंकि जंगल का इलाका है और नक्सलियों का इलाका रहा है, गुदरी प्रखंड का यह गांव है गोरीकेरा, तो पुलिस नहीं खोज पाई। बुधवार की सुबह लाशें रिकवर की गई। 7 उस 7 लाशों की स्थिति यह थी कि उनके हाथ बंधे हुए थे, गर्दन अलग था, घर अलग था, तो उनको पहचान पाने में काफी मुश्किल हुई। लोगों ने गाँव वालों को बुलाया, घरों को उनके सिर से मिलवाया गया, तो इस तरीके से पहचान की गई कि भाई ये अमुक अमुक आदमी मारे गए हैं। लेकिन अभी भी गांव में कोई ये बताने वाला नहीं है कि इनकी हत्या दरअसल हुई कैसे। जो लोकल मीडिया है उसमें 2 तरह की खबरें छप रही है। एक तरफ का जो मीडिया है वो ये कहता है कि पत्थलगड़ी के जो विरोधी थे वो 7 लोग जिनकी हत्या हुई है तो पत्थलगड़ी समर्थकों ने उनको मार दिया। गांव में ग्राम सभा की बैठक हुई और ग्राम सभा की बैठक में निर्णय लेकर मार दिया गया। दूसरा जो मीडिया का जो दूसरा धरा है वो ये कहता है कि नहीं, ये विवाद गांव की पूर्व मुखिया और जो उप मुखिया थे जिनकी हत्या हुई है जेल कपूर, इन दोनों के बीच का विवाद था, तो उस बहाने इन लोग की हत्या हुई है। तो कुल मिला के धर्मय मामला है। पुलिस ने SIP बनाया है और SIP को 5 दिन में जांच अपनी पूरी करनी है, तब जाकर एग्जैक्टली कह पाएंगे की घटना कैसे हुई।
बहुत बहुत शुक्रिया रवि प्रकाश आपका इस ताजा जानकारी के लिए। और झारखंड के बाद अब चलते हैं थोड़ा दूर, यानी दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र या पश्चिमी राज्य आप कह लें। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने पार्टी के पहले महाधिवेशन में गुरुवार यानी आज पार्टी का नया झंडा लॉन्च किया। इसके साथ ही राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को भी राजनीति के मैदान में उतार दिया है। BBC मराठी के संवाददाता मयूरेश इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर है। क्या मयूरेश, राज ठाकरे ने बोलना शुरू कर दिया है?
जी, ये राज ठाकरे अभी बोल रहे हैं, वो भाषण कर रहे हैं। जैसा आपने भी जिक्र किया कि 14 साल पूरे होने को आ रहा है, वहां पे उनके पहला ये अधिवेशन है और पूरे दिन भर ही अधिवेशन चला, जिसमें उन्होंने अपना ध्वज झंडा जो है वो बदल दिया, पूरा सैफरॉन यानी भगवे रंग का कर दिया और अपने बेटे अमित ठाकरे को लॉन्च किया। और अब वो बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बदली हुई भूमिका क्या है, ये रंग क्यों बदला, ये भूमिका क्यों बदली, और उनके ऊपर जो बताया जा रहा है कि वो हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं अपनी पुरानी विचारधारा छोड़ के, तो वो ये कह रहे हैं कि वो पहले से ही इसके बारे में थे, उन्होंने कभी भी ना मराठी का मुद्दा छोड़ा था ना हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा था, वो पहले से सब बातें करते आ रहे हैं, तो कुछ अलग बात वो कर नहीं रहे, जो उन्होंने पहले से वो कह रहे थे वो अब भी कर रहे हैं।
और मयूरेश, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो वो अपने प्रचार में नरेंद्र मोदी का बहुत विरोध कर रहे थे, बीजेपी का विरोध कर रहे थे, अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो बीजेपी के करीब आ रहे हैं, क्या ये बात सही तौर पर कही जा सकती है?
अब ये देखना है कि जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल कही जा रही है, जिस तरह से उन्होंने अपना झेंडा जो है वो भगवे रंग का कर दिया, कुछ दिनों पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी के, महाराष्ट्र के नेता है, उनसे उन्होंने जाके बात की थी, तो ये बातें तो आ रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि वो इस भाषण में क्या इसका जिक्र करते हैं, अब तक तो नहीं किया उन्होंने, अभी आप भाषण करेंगे, लेकिन जी हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा अब तक भाषण में कि जो अगर मोदी ने अच्छी बात की है उसके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने 370 जो कानून है कश्मीर का उसके बारे में जिक्र किया, उसने राम मंदिर का जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का उसका जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जो अच्छी बात है उसका मैंने हमेशा समर्थन किया है, यही बातें उन्होंने अब तक भाषण में कही है। क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, अब सबकी निगाह उस पर है कि क्या वो उसके बारे में कुछ घोषणा करते हैं या नहीं।
बहुत शुक्रिया मयूरेश आपका इस ताज़ा जानकारी के लिए। और एक विशेष सूचना, जैसा कि आप जानते हैं कि बीबीसी हिंदी रेडियो प्रसारण अब बंद होने जा रहा है। नमस्कार भारत पहले ही बंद हो चुका है, शाम में होने वाला कार्यक्रम दिन भर भी इस महीने के आखिर में बंद हो जाएगा, लेकिन मैं अपने श्रोताओं से, बीबीसी के श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ कि इसको लेकर थोड़ा सा भ्रम भी है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि बीबीसी हिंदी रेडियो प्रसारण बंद हो रहा है, बीबीसी हिंदी उसी तरह आपकी सेवा में रहेगी और आपको ऑडियो भी, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो ऑडियो भी मिलेगी, वो आवाज़ें भी आपको सुनने को मिलेगी, सिर्फ हमारा रेडियो का जो शॉर्ट वेव प्रसारण है उसे बंद करने का फैसला किया गया है। बहरहाल ये जानकारी देना आपको ज़रूरी था, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बीबीसी के पुराने लोगों से भी मुलाकात करवा रहे थे, इसी सिलसिले में आज दो लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। पहले सुनिए सुशीला सिंह को, उसके बाद बताएंगे कि दूसरा साथी कौन है।
मैंने सन 2000 में बीबीसी ज्वाइन किया था। पत्रकारिता की शुरुआत ही बीबीसी हिंदी सेवा से की थी। उस समय बीबीसी का दिल्ली में एक छोटा सा दफ्तर हुआ करता था जिसमें 5 प्रोड्यूसर हुआ करते थे। इन सबके पास पत्रकारिता का 10-12 या मुझे लगता है उससे ज्यादा साल का अनुभव रहा होगा, और इनके बीच मैं एकदम नई और अनुभवहीन थी। इतने लंबे अनुभव वाले पत्रकारों, सीमा चिश्ती, रेनू अगाल, रेहान फजल और कुर्बान अली के साथ काम करने का मुझे मौका मिला और पत्रकारिता के गुर सीखे। दिल्ली में हम तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियों, फीचर पर रिपोर्टिंग करते थे। इन रिपोर्ट्स को तैयार करके हम लंदन भेजा करते थे, क्योंकि लंदन स्टूडियो से ही बीबीसी हिंदी सेवा के कार्यक्रम प्रसारित हुआ करते थे। बीबीसी में ही मैंने सीखा कि कैसे शब्दों का सही उच्चारण किया जाता है, रेडियो में कैसे छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और रेडियो रिपोर्ट करते वक्त उसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए और किस शब्द पर कब ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। अगर कहीं भी कोई गलती होती थी तो लंदन से हमें अचला जी और शिवकांत जी का फोन आ जाया करता था, और बहुत ही प्यार से हमें ये बताया जाता था कि किसी भी शब्द का सही उच्चारण क्या है और कहाँ नुक्ते का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप रेडियो के लिए काम कर रहे हैं तो भाषा में स्पष्टता होना, साफ तलफ्फुज एक ब्रॉडकास्टर के लिए सबसे अहम माना जाता था। साल 2006 में हम छोटे से ऑफिस से निकलकर बड़े ऑफिस हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग में आ गए। दिल्ली स्टूडियो से ही अब रेडियो के कार्यक्रम प्रसारित होने शुरू हो गए थे। मुझे प्रोग्राम प्रेजेंट करते ज्यादा समय नहीं हुआ था, और मुझे याद आता है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में चरमपंथी हमले हुए थे। मैं उन दिनों नाइट शिफ्ट पर थी और लीड प्रेजेंटर थी, उस दिन रात के 3 बजे के करीब ही संजीव श्रीवास्तव, जो हमारे एडिटर हुआ करते थे, वो दफ्तर आए थे। रात में हमने बैठक की थी कि कार्यक्रम में क्या क्या लेना चाहिए, क्या कहने से बचना है। मेरे प्रेजेंटर के तौर पर ज्यादा अनुभव ना होने के बावजूद उन्होंने और पूरी टीम ने मुझ में भरोसा दिखाया था। सुबह कार्यक्रम शुरू हुआ, हमने उस समय मौके पर मौजूद रहे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से लाइव किया, पुलिस से बातचीत की और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान आए थे उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया। वो एक अलग ही अनुभव था। बाद में लंदन की टीम ने इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की और काफ़ी उसकी तारीफ हुई। जब भी मैंने आपके भेजे गए पोस्टकार्ड या चिट्ठियों में अपनी किसी रिपोर्टिंग या प्रेजेंटेशन की तारीफ सुनी और अपना नाम लिखा हुआ देखा तो वो कितना सुखद होता है उसके बारे में शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हम हमेशा चाहेंगे कि आपका प्यार बीबीसी हिंदी टीम के लिए ऐसे ही बना रहे। सुशीला सिंह, बीबीसी दिल्ली।
और अब सुनते हैं जुबैर अहमद को।
मेरा नाम जुबैर अहमद है और मैं यहाँ बीबीसी दिल्ली में एक कॉरेस्पॉन्डेंट की हैसियत से काम करता हूँ। मैंने बीबीसी में अपने करियर का आगाज लंदन में बहुत सालों पहले किया था। बीबीसी हिंदी के प्रोग्राम उस समय केवल रेडियो पर प्रसारित हुआ करते थे। उस समय बीबीसी हिंदी और बीबीसी उर्दू में कुछ नामी ग्रामी हस्तियां काम किया करती थीं, जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। अब तो बीबीसी हिंदी एक परिवार की तरह लगता है। खैर, रेडियो के प्रसारण बंद होने पर हमें, जैसे आपको दुख हुआ होगा, हमें भी दुख हुआ है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि हम डिजिटल ऑडियो द्वारा आपसे जुड़े ज़रूर रहेंगे। मैं बीबीसी हिंदी से पिछले 25 सालों से जुड़ा हूं और इस लंबे अरसे में मैंने कई देशों से रिपोर्टिंग की है और कई नेताओं के इंटरव्यू किए हैं। मैंने दुनिया के बड़े बड़े शहरों और भारत के कई पिछड़े गांवों से भी रिपोर्टिंग की है। मैंने बाढ़, भूकंप और आतंकवादी हमलों के दौरान भी रिपोर्टिंग की है और आप तक खबरें पहुँचाई हैं। हमें याद है 26 नवम्बर 2008 की वो रात जब 10 आतंकी मुंबई आया और 5 जगहों पर हमला कर दिया, जो कम से कम 60 घंटों तक लगातार जारी रहा और मैंने लगातार रिपोर्टिंग की, आप तक पल पल की खबरें पहुंचाई। और हमें याद है कि उस समय सोना तो दूर, खाने पीने की भी हमें नहीं पड़ी थी। हमें सिर्फ लग रहा था कि जहां जहां ये हमले हो रहे हैं वहां से सही तस्वीर आप तक पहुंचाई जाए। मुझे लगता है कि रेडियो का माध्यम टीवी से अधिक चैलेंजिंग होता है, जिसमें आपको ऑडियो द्वारा सिचुएशन को बिल्डअप करना पड़ता है। टीवी में आप रिपोर्टर का चेहरा देख सकते हैं, लेकिन रेडियो में आप हमें केवल हमारी आवाज़ से ही फील कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसके बावजूद हमें हमेशा लगा कि आप और हम एक रिश्ते में बंधे हैं। एक बार मुझे याद है कि मैं आम चुनाव के लिए बिहार गया हुआ था। वहाँ एक पटना के गांव से रिपोर्टिंग की थी मैंने और अगले दिन अडवाणी जी का एक भाषण होना था गया में, तो मैं वहाँ पर गया और कुछ लोगों से बातें कर रहा था तो एक साहब ने कहा कि भाई आप जुबैर अहमद हो क्या? मैंने कहा आपने कैसे हमारी आवाज़ पहचानी? उन्होंने कहा आप पटना के किसी गाँव से कल रिपोर्टिंग कर रहे थे, वैसे भी मैं बीबीसी हिंदी हमेशा सुनता हूँ, रोज़ सुनता हूँ और कल भी आपकी रिपोर्ट सुनी, इसलिए मैं आपको जानता हूँ। तो ये हमारा रिश्ता था और हमें उम्मीद है कि रेडियो शॉर्टवेव पर ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन बीबीसी हिंदी द्वारा हम और आप एक मजबूत रिश्ते में बंधे ज़रूर रहेंगे।
और अब समय है आपकी चिट्ठियों के जवाब देने का।
नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ आज मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी। अल्मोड़ा से कमल जोशी ने हमें एक ईमेल भेजा है। इनका कहना है कि ये 1983 से बीबीसी सुन रहे हैं। उन्होंने लिखा, जब हमारे घर रेडियो आया हम तब से बीबीसी सुन रहे हैं। बीबीसी हिंदी में हिंदी प्रसारण की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1990 में प्रकाशित आपकी स्मारिका आज तक मैंने सहेज कर रखी है। 1996 में गोमुख यात्रा के तुरंत बाद मुझे बीबीसी हिंदी सेवा लंदन से अंतर्राष्ट्रीय गंगा प्रतियोगिता में निबंध के लिए पहला पुरस्कार मिला और मेरे निबंध को 2 बार प्रसारित भी किया गया, विज्ञान और विकास के साप्ताहिक कार्यक्रम के वर्षांत के विशेष प्रसारण में। मुझे 29 पाउंड का चेक भी मिला। आदरणीय शिवकांत, अचला शर्मा, ममता गुप्ता, रेहान फजल, राजेश जोशी, सुशीला सिंह सहित अनेक लोकप्रिय प्रसारकों से फोन पर बातचीत का अवसर मिला। बीबीसी रेडियो प्रसारण बंद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। आज के भारत में बीबीसी रेडियो के हिंदी प्रसारण की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। अगला पत्र है राजीव प्रताप का, ये बिहार के औरंगाबाद शहर से लिखते हैं। राजीव प्रताप सिंह लिखते हैं, हारते हुए शायद आपको अंतिम बार पत्र लिख रहा हूँ। आपने जब से ये समाचार मुकेश शर्मा के मुंह से सुनवाई कि बीबीसी हिंदी अपना प्रसारण 31 जनवरी के बाद बंद करने जा रही है, बड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ। अकेले में जिस बीबीसी के साथ पिछले 40 वर्षों से रत्नाकर भारतीय, कैलाश बुधवार, ओंकार नाथ श्रीवास्तव, मार्क टली, मणिकांत ठाकुर, रेहान फजल, रामदत्त त्रिपाठी आदि कितने नाम गिनवाऊं जिनकी आवाजों के जरिए समय बिताता आया हूं। उम्र के इस पड़ाव पर अब नई मित्रता आखिर मैं किससे बना सकता हूं? ये थे राजीव प्रताप औरंगाबाद से। एक चिट्ठी है दिनेश कुमार मौर्य की, अमेठी उत्तर प्रदेश से। इन्होंने ईमेल से लिखा है, श्रीमान जी, बीबीसी हिंदी के प्रसारण के जिम्मेदार समस्त अधिकारियों और स्टाफ से करबद्ध निवेदन है कि बीबीसी के समस्त कार्यक्रमों को पहले की तरह प्रसारित करते रहें, क्योंकि ये कार्यक्रम गागर में सागर भरने का काम करते हैं। बीबीसी हिंदी के कार्यक्रमों को बंद करके देश के युवाओं के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि युवा इन कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीखता है। ये पत्र सुरेश कुमार ने भेजा है मुंबई से। ये लिखते हैं, बीबीसी को हमारा पहला और आखिरी संदेश है। हम 35 साल से मुंबई में रहते हैं, उससे पहले राजस्थान के झुंझुनू जिला के नवलगढ़ कस्बे में रहते थे। वहीं पर इमरजेंसी की खबरें निष्पक्षता के साथ बीबीसी पर सुनने को मिली और सुनते सुनते मैं 69 साल का हो गया। अब बीबीसी रेडियो बंद क्यों हो रहा है? मुझे लगा कि चिट्ठी पहुंचेगी पहले बीबीसी बंद हो सकती है, इसलिए मैं अपने पड़ोसी से ईमेल लिखवा रहा हूं, शायद शामिल हो जाए। मोहनलाल जी, रेहान फजल, नारायण बारेट जी और जयपुर के दूसरे पत्रकार और बीबीसी के सभी साथियों को शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। मैं झारखंड से विनोद कुमार लिख रहा हूँ। ये मेरी पहली चिट्ठी है, लेकिन चाहता हूँ कि अंतिम न हो। मैं लगभग 1996-97 से आपके कार्यक्रम सुन रहा हूँ, जब मेरे बड़े भैया ने एक रेडियो मुझे दिया था। अब ये तो मोबाइल पर ही लाइव सुनता हूँ। मेरे व्यक्तित्व पर आपकी स्पष्ट छाप है और अपने प्रियजनों को मैं बीबीसी सुनने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। जब आपने शॉर्ट वेव प्रसारण बंद करने की बात की तो मुझे नहीं लगा कि आप पूरा प्रसारण ही बंद कर रहे हैं। आज भारत में मीडिया जिस तरह से सत्ता की चाटुकारिता कर रही है, सोशल मीडिया में झूठी और विद्वेषपूर्ण खबरें फैल रही हैं, ऐसे में आपकी पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप पैसों की कमी की वजह से ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो हम सहयोग करने को तैयार हैं। यदि आप अपने निर्णय पर अटल हैं तो निवेदन है कि अपनी वेबसाइट पर 30 से 60 मिनट के बीच का कोई रेडियो कार्यक्रम रोज अपलोड करें। मैं अपनी 3 साल की बेटी के साथ आपका कार्यक्रम सुनता हूं, ताकि उसे एक अच्छा इंसान और जागरूक नागरिक बना सकूं। कृपया इस रिश्ते को बनाए रखें। ये पत्र भेजा था विनोद कुमार ने झारखंड से। और अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है। चलते चलते आप अगले कुछ और दिन हमें ईमेल भेज सकते हैं और शायद कुछ पत्र भी। पत्र लिखने के लिए पता है, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो पता वही है, hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और एक बार फिर प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि कश्मीर की समस्या सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी ताकतों को आगे आना होगा। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने तय किया है कि म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के मामले की सुनवाई करना अंतर्राष्ट्रीय अदालत के न्यायिक क्षेत्र के दायरे में आता है। चीनी सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वुहान शहर के बाद अपने एक अन्य शहर से भी नागरिकों को बाहर जाने और अंदर आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अंगोला में अभियोजक पक्ष ने अफ्रीका की सबसे अमीर महिला इसाबेल दोस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का अभियोग लगाया है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।